නමෝ මහාවදන්ම නමෝ මහාවදන්නාය කෘෂ්ණ ප්‍රේම ප්‍රදායතේ කෘෂ්ණාය කෘෂ්ණ චෛතන්‍ය නාමනේ ගෞරාත්වේෂේ නමහ හරි කෘෂ්ණ आप सबका स्वागत है श्री श्री राधा राधिका रमन श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दाय सुंदर स्कान पंजाबी बाग मंदिर में सोमवार के दिन प्रादा श्री चैतन्य चरितमृत के सत्संग में श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद की लीला उसके तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में हैं हम। लास्ट मंडे को श्रीमान माधवानंद प्रभु बड़े प्रेम में चैतन्य चैतन्य का रस आस्वादन करा रहे थे। ये प्रसंग ही चल रहा था सोमवार को, तो इस वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में है अद्वैत आचार्य के घर पे, और वहां नित्यानंद प्रभु ने सारे चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण हैं नवद्वीप के मायापुर के, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलाया है। ये विशेष नित्यानंद प्रभु का कार्य है भक्तों को भगवान से मिलाना। चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास लेके नवद्वीप से निकले, कटवा गए, कटवा से राड़ देश गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पीछे चलते हुए नित्यानंद गंगा के माध्यम से उनको बहुत प्रेम के आवेश में गंगा को जमुना बताकर और शांतिपुर की तरफ भेज दिया। अद्वैत आचार्य को संदेश भेजा कि आप उनको लेने के लिए आए, और नवद्वीप में संदेश भेजा कि आप सब लोग आइए, चैतन्य महाप्रभु से मिलिए। तो शांतिपुर में ये महामिलन हुआ, जो संभव नहीं था संन्यास लेने के बाद। ये संभव नहीं था, चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन जा रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा से मां सची चैतन्य महाप्रभु को देख पाई, और श्रीवास आदि सारे भक्त उधर आए और कुछ दिन तो वहां रहे। और अद्वैत आचार्य ने बहुत उदारता के साथ, दिन में तो हरी कथा होती थी और रात को संकीर्तन होता था, और इसको लेकर प्रभुपाद जी ने भावार्थ में लिख दिया है कि अगर गृहस्था भगवान ने उनको संपन्न बनाया है तो समय समय को ऊपर भक्तों को साधुओं को बुलाकर कम से कम 3 घंटे शाम को संकीर्तन करना चाहिए, 3 घंटे कीर्तन करना चाहिए, और दिन में हरी कथा चले, शाम को उत्सव हो, 3 घंटे संकीर्तन हो और सबको प्रेम से प्रसाद। ये प्रभुपाद जी के भावार्थ के माध्यम से हमारे कांग्रीगेशन के भक्तों के लिए ये उनका आदेश भी है और संदेश भी है। लेकिन कीर्तन हम 3 घंटे नहीं करते हैं, ये कीर्तन प्रभुपाद ने 3 घंटे कीर्तन लिखा है पूरा, इसका मतलब 5 बजे से 8 बजे तक कीर्तन करो, तब प्रसाद खाओ। हरे कृष्णा। ये जो लिखा है एक पर्पट, इसका कभी किया है किसी घर में अपन ने, ये सुबह से कथा और रात को कीर्तन। चैतन्य चरितमृत पढ़ने का अब हमारा उद्देश्य क्या है? स्कूल में पढ़ाई ने हमारा दिमाग ऐसा खराब किया है कि पढ़ते हैं इम्तिहान पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, उसके बाद काम कभी नहीं लेते हैं उससे। देखा है हमारा ये हमारा नेचर हो गया कि नहीं हो गया? परीक्षा पास करनी है, किताबों को फेंकना है, कुछ नहीं उनसे काम हमारा, फिर हम जैसे हमको चाहे वैसे करेंगे। और यही दिमाग हमारा शास्त्र के ऊपर आ गया। ये पढ़ते हैं, सुबह क्लास में जाते हैं, सुनते हैं, फिर हमको करना क्या है वो तो करना चाहिए ना। ये मैं रात देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद ने इतना बड़ा सुंदर लिखा है। अद्वैत आचार्य सेट एन आइडल एग्जाम्पल फॉर ऑल हाउस होल्डर डिवोटीज इन हिज रिसेप्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड हिज डिवोटीज इन हिज एग्जीक्यूशन ऑफ डेली फेस्टिवल एट हिज होम। श्री अद्वैत आचार्य ने एक अद्भुत उदाहरण स्थापित किया है ग्रस्त भक्तों के लिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु और उसके भक्तों को कैसे उत्साह के साथ अपने घर में बुलाया जाए और उत्सव मनाया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु को अभी बुला सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुंदर श्री विग्रह लेकर 5 तत्व का, उधर भक्त आ जाएंगे, उसमें क्या, चैतन्य महाप्रभु अभी नहीं है क्या, है कि नहीं है? 5 तत्व को साथ लेकर और भक्त घर घर में जाके ऐसे संकीर्तन करें और ये उत्सव चलता रहे तो आपको क्या नौकरी करने की जरूरत है, खाने की क्या परेशानी है, जहां जाओ फेस्टिवल सुबह से शाम तक हो गया, वापस घर आओ, खत्म, कथा समाप्त। क्यों भाई, क्या ख्याल है? हाँ, ये प्रैक्टिकल है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है। हरे कृष्णा। पंद्रह दिन में एक बार करो भाई, ये लिखा है आपको पढ़ना है तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 3rd अध्याय 203 श्लोक जाके पढ़ना, किसी के मन में ये उतरना चाहिए। और 15 दिन में 1-3 घंटे का कीर्तन होना चाहिए शाम को, लिखा है ऐसे कि आगे पढ़ना है। आगे लिखा है इफ वन हैज ए प्रॉपर मीन्स, अगर उसके पास भगवान ने पूर्व जन्म की कमाई का धन दिया है, काला धन नहीं, पूर्व प्रॉपर मीन्स का मतलब उसके पास पहले पूर्वजों की कोई धन संपत्ति है एंड वेल्थ, प्रॉपर मीन्स एंड वेल्थ, घर में जगह भी बड़ी अच्छी है और धन भी है, ही शुड ऑकेजनली इन्वाइट, रोज नहीं, ऑकेजनली इन्वाइट द डिवोटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु who are engaged in preaching all over the world and hold festivals at home simply by distributing prasad and talking about Krishna during the day and holding congregational chanting for at least 3 hours in the evening. क्या विचार है? दिन को कृष्ण कथा करेंगे, रात को 3 घंटे संकीर्तन करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। तो ये नेक्स्ट फेस्टिवल कब करेंगे? ये पर्पट को जीवन में पहले उतारे तब तो कुछ आगे बढ़ना ठीक है ना? नहीं, क्या विचार है? इस कांग्रीगेशन में कौन कौन तैयार है नेक्स्ट उत्सव करने के लिए अद्वैत आचार्य की शिक्षा के ऊपर? 2 हाथ ऊपर हुए, 3, 4, जय निताई गौर प्रेमानंदे। तो मेरे ख्याल में एक बनाना चाहिए डिपार्टमेंट, अद्वैत आचार्य उत्सव मंडल, और उसका काम है ऐसे उत्सव करना। और जो 3 घंटे पक्का टाइम होगा उससे पहले प्रसाद नहीं मिलेगा। ये हमारा मिशन स्टेटमेंट निकाल के रखनी चाहिए, अद्वैत आचार्य उत्सव मंडल और ये श्लोक निकाल के ये पर्पट, और मेरे ख्याल में इसमें ग्रस्तों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और भक्तों को भी अपनी साधन में, और इसमें बहुत सुंदर पर्पट है, दिस प्रोसीजर मस्ट बी अडॉप्टेड इन ऑल सेंटर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं मैं, ये दिस प्रोसीजर मस्ट बी अडॉप्टेड इन ऑल सेंटर ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, सारे कृष्ण भावना के केंद्रों में ये सिद्धांत स्थापित करना चाहिए। और ये क्या है प्रभुपाद कहते हैं, ये यज्ञ है, भागवत में अनुमत किया हुआ है, ये संकीर्तन यज्ञ है और पंच तत्व को साथ ले जाए और डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद करे। और कल युग में यही रास्ता है और सब कर सकते हैं और सब सुखी हो सकते हैं। क्या ख्याल है, ठीक है? तो कौन है, कौन है अद्वैत उत्सव मंडल का इंचार्ज बनेगा? हाँ नहीं, चार पांच नाम है अभी लिखो, देखो। दान पुण्य करने का जब मन में हो ना, तत्काल उसको टिक किया करो, नहीं तो मन बदलने में देर नहीं लगती है। अच्छे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी बुद्धिमानी। आपको सुनाया था कभी, एक बार जहाज में किसी को वो मछली खाई कांटा अटक गया था, तो बड़ा दुखी हो गया। अनाउंसमेंट हुआ जहाज में कि कोई डॉक्टर है क्या? अचानक एक डॉक्टर था और उसके गले से कांटा निकला। उसने बोला, डॉक्टर साहब आपको क्या देना है? बोला, जब तुम्हें कांटा लगा था तुम्हारे मन में जो देने की इच्छा थी उसका आधा दे दो। उसने बोला, मैं लूट जाऊंगा। बोला, क्यों? बोला, जब कांटा अटक गया। मैंने बोला, जो कुछ मेरा है ले लो, मेरा कांटा निकालो। और कांटा निकल गया, तब कहता है डॉक्टर साहब 500। तो जब देने की इच्छा होती है, ये भी भाव भगवान की कृपा से अंदर से कभी परमात्मा प्रेरणा देता है तब आते हैं। और परमात्मा में प्राण से काम नहीं किया तो मन बीच में आगे खड़ा हो जाएगा, क्या भगवान को जरूरत है, अब छोड़ो। इसलिए तत्काल जिनके हाथ ऊपर थे उनका नाम लिख लो, तारीख के बाद में देते रहना, लेकिन ये उत्सव होना चाहिए। मेरे ख्याल में आज मैंने कोई ये कहना नहीं था, आज ऐसे अपने आप आया। इसका मतलब अंदर से प्रेरणा, मतलब ये आप समझ लिए कि महाप्रभु की इच्छा से प्रभुपाद का ये उद्देश्य है कि ये जब लिखा है पर तो इसको प्रैक्टिकल हम करें, और ये यहां शुरू करके फिर और जगह शुरू करेंगे। इसके पायोनियर पंजाबी बाग मंदिर होगा। हरे कृष्णा। अद्वैत आचार्य उत्सव मंडल, और इसका ये इसका हिंदी में छाप के और बना देते हैं। 3 घंटा कीर्तन जब करेंगे तो निश्चित रूप से जो आएंगे, और मेरे ख्याल एक और इसमें रूल रखना पड़ेगा चेतना वालों, जो कीर्तन शुरू होने के बाद दरवाजे बंद, फिर कोई नहीं आएगा। 3 घंटे जो पूरा कीर्तन करेगा वही इसका पूरा लाभ लेगा, भले थोड़े होंगे लेकिन पक्के होंगे। क्या ख्याल है? इसके रूल्स रेगुलेशन बाल में बनाना है, ठीक है? ऐसे नहीं तो क्या 3 घंटे के आखिरी 15 मिनट में सब आएंगे, वो फिर चलेगा नहीं। ये तो सब लोग रहते ही वहां थे, जहां ये प्रोग्राम हो रहा था सब लोग वहीं रहते थे। तो किसको कार्य ये अपन सौंप रहे हैं? देखिए, देखिए, जय कोऑर्डिनेट, कौन किसको कोऑर्डिनेट बनाते हैं? कौन वॉलंटियर होता है इस कार्य करने को? 3 वॉलंटियर है तो 5 पूरे करो, पंच तत्व का कार्य है तो 5 पूरे करो भैया। हाँ, एक मंदिर से कोई होना चाहिए ना पांचवा, जो तो आपको मिलो ना मिलो मंदिर वाला तो मिलेगा। विमला प्रसाद के, रवि लोचन के, एक आधा नाम ले लो भैया। रुकुन किशोर प्रभु, आप किसी को नियुक्त कीजिए एक मंदिर से तो ये मंडल बन जाए। नहीं, एक आदमी उनमें से कोई हो ना। नित्य नित्य धन, अद्वैत उत्सव मंडल नित्य धाम के कोऑर्डिनेशन में कौन कौन है नाम लिख लो, और पहला प्रोग्राम कहां होगा, पहले पांच प्रोग्राम लिख लो। ये जो तीन चार चार हाथ चार पांच हाथ हो गए बहुत सारे, तो शुरू का पहले अमृत मंथन ने हाथ ऊपर किया था, हाँ, फिर महावीर या प्रभु ने, फिर प्रभु जी का क्या छो बोलो, जगन्नाथ, जगन्नाथ मंत्र बहुत अच्छा, और हमारे सालंगराम जी ये, और पांच पूरा यहां रक्तक प्रभु। अब करो आपकी मर्जी, पंद्रह दिन महीना आपको जैसे लगे, लेकिन तीन घंटा कीर्तन जरूर होना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, आगे बढ़ते। अभी देखो मेद कभी हो गई, अगर अगले पंद्रह दिन में करोगे तो एक पहले में मैं चलूंगा आपको, जब मैं यहां हूं तो एक दिन उसके बाद तो भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी कार्यक्रम होना चाहिए। चेतना महाप्रभु आगे, आप एक दिन ये कार्यक्रम, एक महीना, एक साल चलाओ, देखो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन अद्भुत आएगा अनुभव के साथ, करके देखो। ये संभव प्रभुपाद ने लिखा है तो कोई इसका कारण होगा, तो ठीक है। आज मेरे ख्याल में ये एक अच्छा काम हुआ, और इसका इस पर्पट 203 का कोई इसका हिंदी में देख के अच्छी तरह से बना ले तो ये अपना ये कार्य अच्छा है। हरे कृष्णा, आगे चले तो हम कहां, अद्वैत आचार्य घर में ये उत्सव रोज चल रहे थे, और सब लोगों ने कहा कि महाप्रभु अद्वैत आचार्य आप अकेले क्यों सबका रोज प्रबंध करते हैं, हम सब ये कार्य करना चाहते हैं, आज मेरे तरफ से हो, आज मेरे तरफ से हो। तो उस वक्त में सची माता ने उठ के कहा कि देखो आप सब पुरुष हो, जहां भी महाप्रभु है वहां जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, और मैं मां हूं, और संन्यास के बाद ये घर तो कभी आएगा नहीं, जितने दिन यहां हैं ये सारा मेरी तरफ से होना चाहिए, ये मां का भाव है, और मैं सारा रंधन करूंगी। बड़ी उम्र है सची माता की, लेकिन इतने लोगों के सबके लिए प्रसाद बनाने में, रसोई के घर में सारा दिन प्रसाद बनाती है ये माता जियों को, जिसके घर में उत्सव हो वो 10-20 माता जी साथ होके वहां जाके प्रसाद बनाने का पहले प्रोग्राम बनाए। ये सेवा भी सची माता जब प्रसाद सबके लिए बना सकती है तो हमारा धर्म है कि हम जाके वहां खड़े होके उसमें सहायता करें, सत्संग से पहले सब काम तैयार कर लें, क्या विचार है? सची माता स्वयं खड़ी होके, और फिर अद्वैत आचार्य की पत्नी क्या सीता ठाकुरानी, वो मालती आदि ये सब इकट्ठे होके प्रसाद की व्यवस्था करते थे, प्रेम से परोसते थे अपने हाथ से, तो सबने कहा सची माता की बात को मानते हैं, जैसे मां कहेगी वैसे करेंगे, और ये उत्सव चला। और भाई वे कहते हैं कि जाने वाला आदमी को कब तक रोक सकते हैं, तो महाप्रभु ने एक दिन सबको कहा, जब महाप्रभु ने कहा क्या एक दिन, आर दिन प्रभु कहे सब भक्त गणे निज निज घरे सभी करे ही गमन। एक दिन प्रभु ने कहा भाई आप गृहस्थी हो, अपने अपने घर जाओ, इधर कब कितने दिन रहोगे? तो उन्होंने कहा क्या करें घर जाकर, भाई आपको छोड़ के घर जाकर क्या करें? तो महाप्रभु क्या कहते हैं, घरे गिया करे सब कृष्ण संकीर्तन, पुनरपि आमा संगे हाइबा मिलन। अगर घर में जाके आप श्री कृष्ण संकीर्तन करते रहोगे तो समय आने के हम ऊपर फिर मिलेंगे, अपने घर जाओ कृष्ण संकीर्तन करो फिर हम मिलेंगे, ऐसे महाप्रभु ने उनको कहा। और मेरे को जाने दो अब जगन्नाथपुरी, नीलाद्री में जाना चाहता हूं। तो उस वक्त आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे, चार नाम लिखे हैं देखो इस श्लोक में, आइए श्लोक को पढ़ते हैं पहले। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारे जन साथे, नीलाद्रि चलीला प्रभु चत्र भोग पथे, गंगा तीरे तीरे प्रभु चारे जन साथे, नीलाद्रि च लीला प्रभु चत्र भोग पाते। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारि जन साथे। नीलाद्रि च लीला प्रभु चत्र भोग पाते। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारि जन साथे। नीलाद्रि च लीला प्रभु छत्र भोग पाथे। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारि जन साथे। नीलाद्रि च लीला प्रभु चत्र भोग पाथे। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारि जन साथे। नीलाद्रि च लीला प्रभु चत्र भोग सा माता जी। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारि जन साथे। नीलाद्रि च लीला प्रभु छत्र भोग पाते। तो गंगा तीरे तीरे, गंगा के किनारे किनारे प्रभु चारि साथ, जन जन साथे, चेतन महाप्रभु चार जनों के साथे। वो चार जन कौन है? नित्यानंद गोसाई पंडित जगदानंद जगदानंद दामोदर पंडित और दत्त मुकंद। ये चार आदमी, ये चार महाप्रभु के परिकर उनके साथ हैं। नित्यानंद अवधूत गोसाई, पंडित जगदानंद, नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी हैं, और जगदानंद सत्यभामा है। उस भाव से उनके संग में है। और दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, ये चार आदमी और भी कुछ, सबने जाना साथ चाह चेतन महाप्रभु के, लेकिन साथ ये चार ही आदमी। किसने कहा? अद्वैत आचार्य ने कहा कि आप अकेले मत जाओ, कम से कम चार आदमी तो साथ ले जाओ। यही चारी जने आचार्य दिले प्रभु सने, अद्वैत आचार्य ने ये चार साथी चैतन्य महाप्रभु को दिए साथ जाने के लिए। तो इन चारों को लेकर गंगा तीर से चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नीलाद्रि चलीला प्रभु। नीलाद्रि, नीलाद्रि जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे पे एक पर्वत है, उसका नाम है नीलाद्रि। उसको इसलिए नीलाचल कहते हैं। और जगन्नाथ जी का मंदिर है, और जगन्नाथ जी वहां रहते हैं तो जगन्नाथपुरी कहते हैं। तो नीलाद्रि, नीलाचल, जगन्नाथपुरी, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये सब जगन्नाथपुरी के अलग अलग नाम है। तो चेतना महाप्रभु को जगन्नाथपुरी जाने के लिए प्रेरणा किसने दी? चेतन महाप्रभु तो जा रहे थे ना वृंदावन, सची माता ने। सची माता का आज्ञा का पालन करते हुए चेतना महाप्रभु अब जगन्नाथपुरी में रहेंगे। बोले मैं वहां रहूंगा। और हमने सची माता ने क्या कहा था? जगन्नाथपुरी और नवदीप एक घर के दो कमरे हैं। तो घर में दो कमरे हैं तो एक दूसरे के कमरे में आदमी जाता रहता है। तो जगन्नाथपुरी से लोग नवदीप गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, और नवदीप से लोग जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते हैं। तो ये साल में आदान प्रदान, आना जाना होता रहता है। तो आप इतने निकट होंगे तो हमारा आपकी समाचार मिलता रहेगा। अगर वृंदावन चले गए तो बहुत दूर हो जाएगा। ये सची माता का सुझाव था, और सची माता के सुझाव के ऊपर प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है, पढ़ा है आपने? आगे चला है, जरूर पढ़ा होगा लेकिन ध्यान में नहीं है। सची माता के पास जब ये प्रस्ताव ले गए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो आवेश में आके संन्यास लिया, मैंने आप में से किसी से अनुमति आज्ञा ली नहीं, अब आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, मैं आपको दुखी छोड़ के जा नहीं सकता। तो सबने जब सची माता से ये कहा तो सची माता ने कहा कि मेरे को तो सुख तब मिलेगा जब चैतन्य महाप्रभु यहीं रहे, लेकिन उनके संन्यास लेने के बाद घर में रहने से जो उनकी निंदा होगी उससे मुझे बहुत बड़ा दुख होगा। उनका घर में रहने से मुझे सुख मिलेगा और उनके धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उसका मुझे दुख होगा। और प्रभुपाद जी ने लिखा है हर माता को सची की तरह सोचना चाहिए कि बच्चा अगर भगवान का भक्त नहीं बनेगा तो मां को बहुत दुख होगा। हर माता को सची से यह सीखना चाहिए कि बच्चा अगर, और फिर प्रभुपाद जी एकदम भागवत से कहते हैं उसी को माता पिता होने का अधिकार है जो अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सके। वो एकदम उसके बाद ये भावार्थ प्रभुपाद ने ऋषभदेव की शिक्षाओं से दिया है। तो हर माता को सुख इसमें मिलता है कि बेटा सामने हो। अगर मानो कि बेटा सामने हो सुख तो मिलता है, लेकिन आप पढ़ाने स्कूल भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं, दुख होता है, लेकिन काहे के लिए भेजते हैं? भाई लड़के को बाहर अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया, चार साल के लिए क्यों भेजा? दुख तो क्यों भेजा? क्या कारण है? कभी उसका मनोविज्ञान क्या है? अगर अनपढ़ लड़का होगा तो समाज में मुझे बहुत दुख होगा बड़ा हो जाएगा, तो ये नेचुरल है कि नहीं है? इतना होना तो बच्चा घर में आंखों के सामने हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ये सुधर नहीं जाएगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो मेरा समाज में मुझे बहुत दुख भोगना पड़ेगा आगे चल के। ये ठीक है कि नहीं है सिद्धांत? हाँ जी। तो सची माता ऐसे ही कह रही है घर में रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवत भगवान का भक्त नहीं बने और जा रहा है भगवान के धाम में, और जो भगवान के धाम जाए उसको घर में बिठा के रखना तो ये तो दुख होगा, इस बात का मुझे भी दुख होगा। तब सची माता ने निर्णय सुनाया और उसके ऊपर प्रभुपाद का ये भावार्थ है कि माता जैसे अपने बच्चों को आंखों से दूर इसलिए करती हैं कि वो अच्छे बन जाएं, तो सबसे अच्छा बनना तो ये है कि जन्म मृत्यु के मच के वापस भगवत धाम जाला है, इससे और अच्छा क्या बनेगा? लेकिन ये शिक्षा कहीं नहीं है। रात ही जहां सत्संग में हम कहते हैं ये शिक्षा कहीं भी नहीं है ऑफिशियली कि हम किस तरीके से मानव जन्म को ठीक तरह से उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिताएं, इसकी कहीं शिक्षा नहीं है। क्या विचार है? कहीं है शिक्षा इसकी? कहीं भी नहीं। रात तो रात सामान्य बात यह थी आत्मा शरीर और दोनों के नियंता का ज्ञान, ये हम सिर्फ ने हमने कानों से सुना है चलते हुए घर में इधर उधर, लेकिन इसको कभी पढ़ा नहीं है किसी कहीं बैठ के, कहीं शिक्षा की तौर से इसको ग्रहण नहीं किया। ये ज्ञान की शिक्षा कहीं भी नहीं मिल रही। भाई बच्चों का भविष्य अच्छा है, सोचना चाहिए बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारा हम क्या देखना चाहते हैं बच्चे को? अब सबसे बड़ी समस्या ये है पेरेंट्स की, हमारे बच्चे भक्त नहीं बन रहे, ये समस्या है। जो भक्त बने हैं पेरेंट उनके उनकी समस्या है कि हमारे बच्चे भक्त नहीं बन रहे हैं। उनको ये और उनकी समस्या का समाधान ये है कि शिक्षा का कोई स्थान है ही नहीं जहां उसको शिक्षा दी जाए। भाई हमारे पास शिक्षा का कोई विधान है नहीं, और बाहर जो शिक्षा है उससे वो भक्त बनेगा नहीं। वो छोटे होते हैं तो घर में माला भी करते हैं, छोटे होते हैं तो घर में पूजा भी करते हैं, और जैसे वो स्कूल में गए वो पेरेंट कहते हैं कि पहले मानू के 10 माला कर रहा तो अभी 2 कर रहा है। ये सब घरों की कथा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बाहर का प्रभाव हमारे प्रचार से ज्यादा है। बाहर का प्रभाव हमारे प्रचार से ज्यादा है। एक बार कहीं उज्जैन में हमने कहा कि रोज सुबह उठ के लोग क्या पढ़ते हैं, उसका कारण कौन है? जितना अखबार वाला मेहनत करके सबके घर में रोज फेंक के आता है, इतने अगर हम जाके सबके घर में बैक टू गार्ड फेंक के आए तो लोग बैक टू गार्ड भी पढ़ेंगे ना। तो हम नहीं उतना परिश्रम कर रहे हैं जितना वो मीडिया कर रहा है प्रचार का, उतना हम नहीं कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा ये आपके इतने पर्चे छप रहे हैं, भगवान के पर्चे इससे ज्यादा छपने चाहिए। तो लोग अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उन तक पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। उतना प्रभुपाद का इच्छा था कि बैक टू गार्डन लोगों के घर में ऐसे होना चाहिए जैसे रीडर डाइजेस्ट ऐसे होता है कि हर घर में होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें भाई देखो लोग कुछ न कुछ तो सीखना चाहते हैं, लेकिन हम उनको अल्टरनेटिव तो कोई दे ना। अगर प्रभुपाद जी ने उस वक्त पाश्चात्य लोगों के दोष के लोगों को अल्टरनेट नहीं दिया होता, भाई आपको खुश होने के लिए नाचना है गाना है खाना है तो आओ आपको ये चीज देते हैं, तो जो चीज आपका हित करे वो करो। तो जितनी फ्रीक्वेंसी से जितनी परिश्रम के साथ वो चीज वहां पहुंच रही है, उतने परिश्रम से हम क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं वो चीज? ये हमारे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जब हम इसको ऐसे सोचेंगे तब हमारे अंदर में पीड़ा होगी, तब हम ये काम करेंगे, और कौन करेगा ये काम? एक बार तिहाड़ के जुवेनाइल छोटे बच्चों की जेल में 2000 बच्चों के सामने हमको बोलने का जब हुआ, हमने कहा बेटा तुम आज जेल में हो उसके कारण हम हैं, अगर हमने आपको शिक्षा दी होती तो आप यहां थोड़ी होते। अगर हम पेरेंट्स ने आपके बड़े बुजुर्गों ने अगर आपको शिक्षा दी होती तो आप जेल में थोड़ी होते। अगर 15-12 साल का बच्चा अगर जेल में है इसका मतलब उसकी शिक्षा दीक्षा ठीक नहीं है ना, तो हम जिम्मेवार हैं कि नहीं उसके लिए? तो हमने बोला हम जिम्मेवार हैं बेटा, तुम यहां हो इसलिए, और हम अपनी गलती को मानते हैं तब हम आपके पास आए हैं कि अब भी आप सुधर जाओ तो अच्छा है। तो असल में ये जो कुछ हो रहा है, प्रभुपाद ने एक भागवत के पर्पट में लिखा है कि दुनिया में आतंकवाद हो रहा है उसका कारण भारत है। क्या विचार है? दुनिया के आतंकवाद का कारण भारत है। लोग कहते हैं पाकिस्तान है, लेकिन भागवत में प्रभुपाद लिखते हैं दुनिया के आतंकवाद का कारण भारत है। क्यों? क्योंकि हमने भागवत धर्म का प्रचार नहीं किया। किया होता तो लोग सुधर जाते, तो ये कहां हालत नहीं होता। अगर हम ये भागवत धर्म का प्रचार करते तो लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती और तो लोग इतने उद्दंड नहीं होते, इतना आतंकवादी नहीं बनते। वो पुलिस कमिश्नर को प्रभुपाद ने अमेरिका में यही कहा था कि आपको अगर अपराध कम करना है तो लोग हमको इकट्ठे करके दो, हम उनका कीर्तन करके मन बदलेंगे तब अपराध बदलेगा, सजा से अपराध खत्म नहीं होंगे। लोगों की चेतना में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उनकी कॉन्शियसनेस बदलनी पड़ेगी तब अपराध से मुक्त होंगे। और 62 में प्रभुपाद ने दिल्ली में जेल सुप्रिंटेंडेंट उस वक्त में था उसको चिट्ठी लिखी थी कि बंदी भाइयों के उद्धार के लिए हम उनको शिक्षा देने चाहते हैं। मैं सोच रहा हूं कभी कि बाहर के लोग कथा में आते ही नहीं थे, प्रभुपाद बोले कम से कम वहां 50 के 50 मिलेंगे तो सही कथा सुनने के लिए। भाई वाह वाह, अभी भी हम जेल में जाते हैं तो 2000 आदमी कथा के लिए मिलते हैं, आराम से आके बैठते हैं, और क्योंकि पुलिस वाले उसको बिठाते हैं, उनको कथा सुननी है। बाहर तो कोई आता नहीं है, क्या करें? ये प्रभुपाद का ये डॉक्यूमेंट्री में लेटर, अभी तक डॉक्यूमेंट्री लेटर पड़ा है हमारे मतलब इस्कान प्रिजन मिनिस्ट्री में, तो लिखा था उस वक्त कौन था जेल सुब्रन नाम के, हम उनको शिक्षा दे के उनके चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर अभी भी दुनिया भर में जेलों में प्रचार हो रहा है। तो ये जो भी वातावरण खराब है उसके कारण जब हम दूसरों को मानते रहेंगे तब तक वो सुधरेगा नहीं, जब उसका कारण हम अपने आप को मानेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे। क्या विचार है? हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु नीलाद्री जगन्नाथपुरी के लिए गंगा के किनारे किनारे चलने लगे पैदल। चेतन मंगल में लिखा है कि वेंती की भक्तों ने कि आप पैदल इतना लंबा सफर कैसे करेंगे, 600 मील से ऊपर सफर है। लेकिन ये चार और पांचवा महाप्रभु ये पांचों पैदल पैदल कौन से रास्ते से गए, ये तो मार्ग का बताया चत्र भोग पथे। और जो भावार्थ इसका लिखा है, जो पर्पट लिखा है, जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो सिर्फ उस मार्ग का ज्योग्राफी है कि महाप्रभु किस रास्ते से गए थे। और मेरे ख्याल में एक साल पहले के दो साल पहले महाप्रभु के संन्यास के 500 साल हुए थे, तो उस मार्ग से एक पूरी यात्रा चली थी, मायापुर से वो शांतिपुर से पूरी यात्रा चली थी उसी मार्ग से, और पुरी में उसका संपन्न हुआ था। तो कलकत्ता और पुरी में उस यात्रा में हम गए थे, तो इस रास्ते को उसी मार्ग से सब उस जहां जहां महाप्रभु जिस जिस गांव में रुके थे संन्यास के बाद, उस गांव में भक्त गए थे, वहां कीर्तन किया था, गाड़ियां भक्त पूरा एक ड्रामा टीम ऐसे लेकर उन्होंने उत्सव किया था। तो इसका यहां लिखा है तो इस छत्रपुर जो छत्रपुर मार्ग है इसके बारे में है, कौन सा श्लोक है, दो कौन सा है ये 216 24 परगना जनपद में पूर्व रेलवे के दक्षिणी खंड में मग्राहट नामक रेलवे स्टेशन है। अब ये मैं पढ़ रहा हूं, इसको समझ में नहीं आएगा कि भाई 24 परगना कलकत्ता के पास एक पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, कुछ पहले परगना कहते थे एरिया को, 24 कठे परगना है, उसमें वो रेलवे लाइन पे एक स्टेशन है। यदि इस स्टेशन से 14 मील दक्षिण पूर्व की ओर चले तो जयनगर नामक स्थान मिलता है, एक जयनगर कोई जगह है। इस स्थान से लगभग 6 मील दक्षिण में छत्रभोग गांव है, कभी कभी इसे खाड़ी भी कहते हैं। इस गांव में वैजुर्कनाथ नामक शिवजी का अर्चा विग्रह है। प्रतिवर्ष यहां पर मार्च अप्रैल मास में एक उत्सव मनाया जाता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने लिखा है एक मंदिर है उसका उल्लेख लिखा है, और वैजनाथनाथ मंदिर है, और इसमें साल में इस महीने में उत्सव होता है, और महाप्रभु इस रास्ते से उस गांव से गुजरे हैं। ये उत्सव नंदा मेला के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय यहां गंगा नदी नहीं बहती। इसी रेलवे लाइन पर एक अन्य स्टेशन है जिसका नाम है बारूहीपुर। इस स्टेशन के पास ही आटी सारा नामक एक दूसरा स्थान है, पहले यह भी गंगा के तट पर स्थित था। इस गांव से पानी हट्टी जाया जा सकता है, जहां से कलकत्ता के उत्तर में स्थित बारहा नगर जाया जा सकता है। उन दिनों गंगा नदी जो आज भी आदि गंगा कहलाती है, कलकत्ता के दक्षिण स्थित काली घाट से होकर बहती थी। ये गंगा का मार्ग बताया कि गंगा कहां से बहती है, और गंगा के किनारे किनारे के महाप्रभु जा रहे थे। महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो वृंदावन से वापस जब जा रहे थे गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे, और उसमें लिखा है कि वापसी में गंगा से किनारे जाते हुए वो जगह का नाम लिखा है शोरो तीर्थ पे गए थे। जब हमने पढ़ा तो हम जाके ढूंढा उसको, भाई शोरो तीर्थ कहां है, तो आजकल गंगा वहां नहीं बहती है जहां शोरो तीर्थ था। अब गए हैं कभी शोरो तीर्थ, कोई गया है आप में से? बहुत सुंदर वाराहदेव का मंदिर है, एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें गंगा का पानी आया करता था। उसकी विशेषता है कि उसमें अस्थियां डाली जाएंगी तो उसी वक्त वो गल जाएंगी, उसी वक्त वो एकदम समाप्त हो जाएंगी, और सरोवर भी जैसे इतना बड़ा नहीं है जितना कुरुक्षेत्र में, बहुत बड़ा सरोवर है। और सौरव तीर्थ अभी भी बहुत से लोग जैसे अस्थियां प्रवाह करते हैं गंगा में जाकर, ऐसे सौरव तीर्थ में बहुत से लोग जाते हैं। और ये सौरव तीर्थ मतलब वृंदावन से होगा मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर, बदायूं और काशगंज के बीच में है, काशगंज और बदायूं के बीच में है, और गंगा वहां से थोड़ी दूर है। तो हम जब सौरव तीर्थ गए और उसके बाद एक स्थान पे बैठे, हम देखा बोला पहले गंगा यहां से बहती थी, तो महाप्रभु सौरव तीर्थ रुके थे इसलिए हम उस तीर्थ को विशेष रूप से देखने गए थे। और वाराहदेव का वहां मंदिर है, गौड़िया मठ का मंदिर भी है, और एक पुराना ऐतिहासिक तीर्थ है, तो महाप्रभु ने उसको विजिट किया था इसलिए हम वहां गए थे। तो ऐसे गंगा के किनारे किनारे जो तीर्थ थे, उन तीर्थों के अंदर जो मंदिर थे, उनको देखते देखते महाप्रभु आगे जा रहे थे। तो ये हम कहां तक पहुंचे, शांतिपुर से कलकत्ता तक पहुंचे अभी। उसके बीच में यहां सिर्फ एक नाम छत्रभोग स्टेशन का है, छत्रभोग गांव में रहे महाप्रभु। इस सारे रास्ते में महाप्रभु ने सिर्फ 3 दिन भोजन किया, ऐसे लिखा है कि वो कहीं से कुछ लोग विशेष कहीं थोड़ा सा प्रसाद लिया तो लिया, नहीं तो प्रायः 3 दिन कभी नहीं भी कुछ खाया, ऐसे आनंद में रहे और इस रास्ते के ऊपर चले। इसी रास्ते से रघुनाथ दास गोस्वामी गया था गंगा के तीर तीर्थ से, 12 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंचा था, और केवल 4 दिन रास्ते में किसी गौशाला में दूध या कुछ प्रसाद मिला था। और उसके लिए लिखा क्या है कि बॉडी वाज फास्टिंग, सोल वाज फीस्टिंग। शरीर तो व्रत रख के तपस्या कर रहा था, लेकिन आत्मा आनंद और उल्लास में चेतना महाप्रभु को मिलने के भाव में थी। तो यहां चेतना महाप्रभु कह रहे थे कब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, और उस भाव में आवेश में जा रहे थे। तो तीर्थ जब जाना है तो भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा पे जाना है तो भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। और हम जब तीर्थ यात्रा जाते हैं तो हमारा 2 ही प्रश्न हो गए, प्रसाद कहां है, रूम कहां है। क्या मंदिर कौन सा देखेंगे, ये तो किसी को ध्यान में नहीं होता। तो हमारी तीर्थ की कॉन्शियसनेस क्या है, जब जा रहे हैं जगन्नाथपुरी का दर्शन करने, तो सवाय जगन्नाथ के ध्यान के और कुछ दिखता नहीं है, भोजन का सूझता नहीं है, रहने के स्थान की, थक गए तो पड़ जाएंगे, उठ गए तो चल देंगे, और कहीं से ऐसे रास्ते में कोई दूध मिल गया दे दिया किसी ने ले लेंगे। ये आवेश है तीर्थ के दर्शन का, वहां भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, ये भाव है। और ये अगर नहीं है तो फिर दूसरा भाव होता है, वो तो भोग का ही भाव है, जो हमारे घर का है वही भाव उधर तक का है। मंदिर में तो चलो एक हम जाते हैं यहां से वृंदावन, कितनी देर मंदिर में बैठते हैं और कितनी देर बाहर बैठते हैं, हाँ? अगर धाम में जाते हैं तो जो दर्शन करने जाते हैं उधर कितना रुकते हैं, हाँ? 15 मिनट वहां रुकते हैं 24 घंटे में, फिर क्या करते हैं, हरे कृष्णा। क्या करना चाहिए, क्या विचार है, हाँ? एक बार मेरे को याद बद्रीनाथ में मैं गया, एकादशी का दिन था, उधर ही बैठ के मैंने कितने 16 माला 32 माला उधर ही बैठ के, जाना नहीं है खड़े खड़े के बैठना है, खड़ी जाए बाहर क्यों जाऊं, आया हूं इतना दूर बद्रीनाथ तक आया पहाड़ में, अब बाहर जाके ऐसे पहाड़ों को देखूं, यहां क्यों नहीं बैठा। वो बोला हटो नहीं, बोला हटूंगा नहीं, मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, और मेरे को हटाया नहीं और उधर ही बैठा मैं। जाते कोई 5 साल में एक बार जाते हैं, और वहां भी जाके वही करें जो घर में कर रहे हैं तो फायदा क्या, पानी भी नहीं पीना, निर्जला एकादशी थी तो और कोई काम ही नहीं था, तो उधर ही बैठना है, बाहर आएंगे तो किसी से बात करेंगे और क्या करेंगे भाई, बाहर निकलोगे मंदिर से तो क्या करोगे बोलो, ऐसी बेकार की बातें करेंगे ना, किसी न किसी से कोई काम तो नहीं करेंगे, चाहे अंदर हो तो कम से कम और कोई बात तो सूझेगी नहीं, बैठ के पुस्तक आप पूरा पढ़ लो, कोई उधर यहां से ये नेम लेके जाओ कि मैं अगर जा रहा हूं वृंदावन तो इस बार मैं ये चेतना मंगल सारा पढ़ के आऊंगा, जैसे तो कम से कम आप 5 घंटे तो आपने अपने फिक्स कर लिए ना, और फिर अगर 10-20 आदमी जाते हो तो बोला जो एक चैप्टर तुम पढ़ो, एक तुम पढ़ो, फिर सब बैठ के इसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो कोई तो प्लान बना के जाना चाहिए ना। हरे कृष्ण। नहीं हम अगर मानो 20 बार गए हैं वृंदावन तो सब मंदिरों के दर्शन किए फिर जाके कर सकते हैं, लेकिन कोई एक विशेष सब्जेक्ट ले जाएं कि इस बार हम ये इस यात्रा के अंदर ये सब्जेक्ट के ऊपर इतना हम बैठ के डिस्कशन करेंगे और ये 5 घंटे का ये 6 घंटे का, तो कम से कम सबका कुछ सदुपयोग होगा ना, शास्त्र का अध्ययन होगा। वैसे भी वो श्लोक नहीं तो हमसे लागू हो जाएगा, कौन सा, तीर्थ में जाए स्नान करे, हाँ स्नान करे और फिर वापस लौट के आए तो गोखर समाना, गोखर गोखर उसका नाम है, गोखर समाना, वहां साधुओं के संग में बैठकर हरि कथा न करे तो तीर्थ का कोई लाभ नहीं है विशेष। तो महाप्रभु के तीर्थ जाने से यह देखना चाहिए, लिखा है चैतन्य के रास्ते में सिर्फ 3 या 4 जगह पे थोड़ा सा प्रसाद, वो भी अल्प लिया, नहीं तो हाथ लगाया और चले, और कहां रुके हैं, मंदिरों में रुके हैं, जो मंदिर रास्ते में आया उसमें रुक गए, रास्ते में कहीं भी रुके। तो इससे हमें सीखना है कि तीर्थ यात्रा करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए भी कुछ, ठीक है हमारी अभी ऐसी स्थिति है कि कुछ सुविधाएं हमको चाहिए, वो तो सुविधाएं जरूर लेनी चाहिए, लेकिन सुविधाओं के लिए नहीं जाना चाहिए, जाना तीर्थ के लिए जाइए, यानी जो हमारे हमारा जो उद्देश्य मेन हो वो तीर्थ होना चाहिए, सुविधाएं नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सब चीजें उल्टी हो गई है, दिमाग बुद्धि भी उल्टी हो गई है, ये समस्या है, इसका क्या करें। तो फिर आगे यहां से क्या हो, चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा, कभी गए आप में से वो पानी हट्टी, कितने लोग गए हैं इसमें, हाथ बहुत है, अच्छा है, पानी हट्टी कलकत्ता के पास है, कभी कभी कलकत्ता जाना हो तो कलकत्ता से कोई 10-15 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, और कलकत्ता अंदर ही आता है, बहुत सुंदर गंगा के ऊपर घाट है, नाग स्नान किया, स्नान करना चाहिए, और बहुत अच्छा वट है, उसके नीचे अद्वैत अपना नित्यानंद प्रभु बैठे थे, और अंदर में महाप्रभु जहां गए थे, राघव पंडित, जिसके घर से दमयंती बना के भेजती थी महाप्रभु के लिए सूखे सूखे आचार और चीज, 12 महीने चलती थी, तो वो स्थान, ये बहुत सुंदर स्थान देखने के हैं, कभी जाएं। तो ये मार्ग से भी महाप्रभु गए थे उसका यहां वर्णन है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है जहां से कलकत्ता है, कहां बाहरूपुर से गंगा नदी की शाखाएं फूटकर मथुरापुर थाना के निकट डायमंड हार्बर से होकर बहती थी। ये ध्यान देने की बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हुए इन सारे स्थानों से होकर गुजरे, तो ये महाप्रभु के जाने का रास्ता है। मेरे ख्याल में अब 3-4 श्लोक और पढ़ के इस अध्याय को पूरा करते हैं, 5 मिनट और लगेंगे। इसके बाद श्लोक है, चेतन मंगले प्रभु नीलाधरी गमन विस्तारी वर्णिया छे न दास वृंदावन, और चेतन मंगल जिसको चेतन भागवत कहते हैं उसमें वृंदावन दास ठाकुर ने चेतन महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के जाने के रास्ते का बहुत वर्णन किया है, और इसमें भी 2 चीजें लिखी है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जैसे गए तो उनके रास्ते में आटीसारा गांव आया, वारहा ग्राम आया, चत्रभोग आया, और उसके बाद ओडिशा में प्रवेश किया, और ओडिशा में वो प्रयाग घाट, स्वर्ण रेखा नदी, रेमुणा, याजपुर, इस रास्ते से होते हुए 10 अश्वमेध घाट में स्नान करके वैतरणी नदी को पार करके और कटक के पास महानदी जहां बहती है उसको पार करके भुवनेश्वर आए, और वहां एक बहुत बड़ा बिंदु सरोवर है, उस बिंदु सरोवर में नहाया, फिर वहां लिंगराज का दर्शन किया। जगन्नाथपुरी जाना है तो पहले वो शंख क्षेत्र भी कहते हैं, उसकी जो शक्ल है वो शंख जैसी है, और शंख का जो मुख है वो भुवनेश्वर है, और इसका पहले नाम दूसरा था, और वहां लिंगराज भगवान शंकर का एक बहुत विशाल मंदिर है, लिंगराज उसका नाम है, और उसका दर्शन करके फिर जगन्नाथपुरी में जाना है, और जगन्नाथपुरी का दर्शन करके फिर साक्षी गोपाल का दर्शन करके वहां से साक्षी लगा के आना है। तो ये यात्रा इस तरीके से ऐसे होगी। और जब तो आगे लिखा है कि यहां से आगे कमलापुर गए और फिर अठारह नाला। अठारह नाला जगन्नाथपुरी में ही है। अठारह नाला का मतलब कोई एक पुल है जिसके अंदर अठारह पाइप कोई डले हुए, अठारह नाला, और वहां से जगन्नाथपुरी का चक्कर दिखता है। तो वहां से जब लोग आते थे तो जगन्नाथपुरी का दर्शन होता था। अठारह नाला वो तो पुरी के अंदर ही है। और इस रास्ते से चलते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। अद्वैत ग्रह प्रभु विलास सुनिए जना, आचिरे मिले ये ताहर कृष्ण प्रेम धन। ये आपके लिए और हमारे लिए श्रुति फल है। क्या श्रुति फल है? अद्वैत ग्रह प्रभुर विलास सुनी यही जन। जो भी आप लोग अद्वैत आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु के लीला का वर्णन सुनेगा, विलास सुनेगा, अचिरे बहुत जल्दी मिली ले मिलेगा तहारे उसको कृष्ण प्रेम धन, उसको कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। हरी बोल। अद्वैत आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु का जो भक्तों के साथ मिलन का वर्णन सुनेगा उसको शीघ्र ही कृष्ण प्रेम मिलेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार्यास चेतन चरित्र मित्र चरितामृत कहे कृष्णदास। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं रूप दो गोस्वामी और रघुनाथ के चरणों में प्रणाम करके हमने ये चेतना महाप्रभु के लीला का वर्णन किया। अब चेतना महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच गए। कल हम जगन्नाथपुरी मंदिर में जाने से पहले अभी रास्ते में रेमुणा का वर्णन आएगा, खीरचोर गोपीनाथ का, और वहां भगवान का दर्शन करके भगवान के भक्त की याद आती है। भक्त का दर्शन करके भगवान की याद आती है तो वहां चेतना महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के महिमा कहेंगे। देखो भक्त भगवान की महिमा कहे बड़ी बात नहीं है, भगवान किसी भक्त की महिमा कहे तो वो भक्त कितना महान होगा। शिष्य गुरु की महिमा कहे तो बड़ी बात नहीं है, गुरु शिष्य की महिमा करे ये बड़ी बात है। नारद ऐसा गुरु है जो प्रहलाद महाराज की महिमा भागवत में गाता है। चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की महिमा गा रहे हैं कि कितना महान है माधवेंद्रपुरी। तो ये अद्भुत वर्णन है चैतन्य चरितमृत में, जिसको अगले सोमवार को आप श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो तीर्थ बुद्धि अपने को बनानी चाहिए और घर में अद्वैत उत्सव मंडल, दो कार्य आज के इस सत्संग से हमको अपने पल्ले में बांध के लेना चाहिए। एक दिन तपस्या कर लेने में कौन सा फर्क पड़ता है, तीर्थ में थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। वैसे भी जब तक कष्ट नहीं सहेंगे तब तक सुख नहीं पाएंगे। हाँ, नो पेन नो गेन, ये पुराना कहावत है। अगर कष्ट नहीं पाया तो सुख भी नहीं मिलेगा। तपस्या नहीं करेंगे तो कहना अगर विषाद नहीं तो प्रसाद नहीं, विषाद है तब प्रसाद मिलेगा। विषाद का मतलब दुख होएगा तब प्रसाद मिलेगा। विषाद से प्रसाद आता है और तपस्या से पवित्रता आती है, शुद्धता आती है। तपस्या से शुद्धता आती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।